نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نماز نبی میں سے ہم جس ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے اور اپنے لیے عمل کیے پوائنٹس لیں گے وہ کیا ہیں؟ آذان اور اقامت. اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد ہمیں جو باتیں معلوم ہوئیں وہ کیا ہیں؟ پہلی چیز کہ اسلام سے پہلے عبادت کے لیے مختلف طریقوں سے انوائٹ کیا جاتا تھا. تو پہلی چیز جو ہم نے اس چیپٹر میں دیکھی وہ کیا تھی کہ نماز کے لیے یا عبادت کے لیے بلانے کے لیے آگ روشن کی جاتی تھی یا گھنٹیاں بجائی جاتی تھیں، لیکن اللہ کے نبی نے یہ طریقہ پسند نہیں کیا. اس سے ہمیں کیا بات عمل کی پتہ چلی؟ کہ عبادت میں بھی غیر مسلموں کے طریقوں کی مماثلت نہیں کرنی چاہیے. مثلا آگ جلانے کا جو طریقہ یا گھنٹی بجانا، یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے، تو اللہ کے نبی نے اس چیز کو پسند نہیں کیا. تو آج دین کے ریچولز کے اندر بھی ہمیں نان مسلمز کی مماثلت نہیں کرنی چاہیے. اگلی چیز، ہم نے اس حصے میں اذان کے کلمات سیکھے کہ اذان دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہر لفظ کو دو دو دفعہ کہنا اور دوسری ایک ایک دفعہ کہنا. اذان کے جو کلمات ہیں، عورت پہ اذان دینے کا حکم نہیں ہے، یعنی عورت اذان نہیں دے سکتی، لیکن یہ ہے کہ سکھا تو سکتی ہے نا اپنے بچوں کو. تو ایک دفعہ ان کلمات کو ہم سارے دہرا لیتے ہیں سیکھنے کے لیے، کوئی اس لیے نہیں کہ ہم اذان دے رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. محسوس کریں ہر پکار کو اپنے دل پہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، نجات کی طرف آؤ، نجات کی طرف آؤ. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. کیا واقعی یہ کلمات جو اردو میں اثر دے رہے ہیں، ہم اذان کو سن کے یہ محسوس کرتے ہیں؟ میں سوچتی ہوں کہ جہاں اتنی دفعہ اذان کے کلمات گھروں میں آوازیں آئیں اور پھر بھی اللہ کی ذات بڑی نہ لگے، کیونکہ بڑا تو وہی ہوتا ہے جس کی بات مانی جاتی ہے. اس پکار پہ اگر ہمارے قدم مسجدوں کی طرف نہیں اٹھتے، یا وضو کے لیے باتھ روم میں جانا اور جگہ پہ پہنچنا نہیں شروع ہوتا، تو مان لیجئے کہ ہم نے اللہ کو بڑا نہیں سمجھا. اب زبان سے کسی کو کتنا مرضی کہتے رہے نا، آپ بڑے ہیں، آپ بڑے ہیں، اور ان کی بات نہ مانے تو وہ پھر وہ کہیں گے یہ کھیل ہے. بعض دفعہ اللہ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہمارا ہونے لگتا ہے. تو لہٰذا نماز کے ترجمے کو بھی گھر والوں کے ساتھ دہرانے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ بچپن سے بچوں کو، چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کو اس کا احساس دلائیں. اس اذان میں ہم نے دیکھا کہ ہر کلمہ دو دفعہ کہلایا گیا، اسی طرح یہ اکہری اذان بھی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یعنی دونوں طرح کی اذان کی جو بات تھی وہ ہوتی تھی، اور ایک صحابی ایک طرح سے اذان دیتے تھے، دوسرے دوسری طرح سے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا کوئی ज़्यादा असर नहीं होता किसी दूसरे की, मतलब मुखालफत नहीं आती, तो वो चीज़ मौजूद होती है। फिर अगली चीज़ हमने इस हिस्से में सीखी कि फजर की अजान में इससे कुछ ज़्यादा अल्फाज हैं, और वो क्या हैं ये भी आप मेरे साथ अदा करेंगे अगर, कि ये जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में जो फजर की अजान में लफ्ज़ बढ़वाए वो क्या थे? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। इसका मतलब क्या है कि नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। और मैं जब फजर की अजान कभी सुनूं तो मैं सोचती हूँ कि ये जुमला जिनको सुनाना है वो तो सो रहे हैं। हम सो के क्या सोचते हैं कि आराम कर रहे हैं, जिस्म को सुकून मिल रहा है, रिलैक्सेशन है, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं नहीं, उठ के नमाज़ पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर है। और ये फजर की नमाज़ के लिए ख़ास चीज़ है क्योंकि उस वक़्त इंसान अपनी नींद छोड़ता है। फिर अगली बात हमने इसे में सीखी कि सुबह की अजान में हय्य अलल फलाह के बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम दो दफ़ा कहना सुन्नत से साबित है। फिर अगली बात हमने सीखी और वो क्या, हदीस सुना देती हूँ। हज़रत इब्ने अब्बास ने बारिश के दिन अपने मौज़िन से कहा कि हय्य अलल सला की बजाय अस्सलातु फिर रिहाल यसल्लु फी बुयूतिकुम। तर्जमा क्या है इसका? अपने घरों में ही नमाज अदा करो। कहे और फरमाया, रसूलुल्लाह ने ऐसा ही किया। जुमा अगरचे फ़र्ज़ है मगर मुझे पसंद नहीं कि तुम कीचड़ और मस्जिद में, यानी तुम कीचड़ और मट्टी में चलो। इससे हमारे लिए एक मसला जो मालूम हुआ हमें वो क्या है कि अगर कोई ऐसी बारिश या ऐसा मौसम हो जिसको हम कह सकते हैं कि जिसमें घर से बाहर निकलने में फितना है या ख़तना है, तो फिर उस सूरत में घर के अंदर नमाज अदा करने के लिए, यानी ये लफ्ज़ बोले जा सकते हैं उस अजान के अंदर, जब अजान कोई देता है तो ये लफ्ज़ अदा किए जाते हैं। फिर अगली चीज़ हमने इसमें सीखी और वो क्या है कि अल्लाह के नबी के ज़माने में अज़ान के कलेमात दो बार और तकबीर के कलेमात एक एक बार थे, सिवाय इसके कि मौज़िन कद कामत सलात दो दफ़ा कहता। तकबीर क्या होती है? कि नमाज के बाद जमात खड़ी होने से पहले इमाम जो है अपने मुसल्ले पे पहुंच के वही कलेमात जो अज़ान के दो दो दफ़ा थे उसको एक एक दफ़ा कहता है। अभी जो हमने दोहराए थे वही एक दफ़ा, सिर्फ इसमें फ़र्क क्या है कि हय्य अलस सला और हय्य अलल फलाह के बाद कद कामतिस सला, कद कामतिस सला, बेशक नमाज खड़ी हो गई, बेशक नमाज खड़ी हो गई। ये अल्लाह के नबी से साबित है और ये इकामत मस्जिदों में जहाँ नमाज होती है या जहाँ भी लोग करते हैं तो वहाँ हो ये चीज़ मतलब कही जाती है। और ये शैतान को भगाने के लिए भी होता है, आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जब अज़ान की आवाज़ आती है तो शैतान इतनी दूर भाग जाता है कि जहाँ से उसको आवाज़ ना आए, फिर जब अज़ान ख़त्म होती है तो वापस आता है, फिर वज़ू में वसवसे डालता है। फिर इंसान जब जमात के लिए खड़ा होता है अज़ान के लिए तो इकामत की आवाज़ सुन के फिर भाग जाता है। शैतान को सबसे बुरी आवाज़ अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह की ज़ात का, यानी अल्लाह ताला की तारीफ़ करना लगता है। और फरमाया कि जूँ ही इकामत ख़त्म होती है वापस आके नमाजियों के दिल में वसवसे डालता है। कमिटमेंट देखिए कि कभी भी अपनी काम से पीछे नहीं हटता। फिर अगली बात हमने इसमें सीखी अबू महजूरा के बारे में। इनका वाक्या बड़ा दिलचस्प है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा आपके सहाबे कराम एक सफ़र पे थे, रास्ते में नमाज का वक्त हुआ, अमीर लश्कर ने हुक्म दिया कि यहाँ सब खड़े हो जाएं, अजान हुई है, नमाज पढ़ेंगे, अजान देंगे। अब एक सहाबी ने खड़े होके अजान दी, कुछ लड़के पास खेल रहे थे, कुफर पे थे अभी। जब उन्होंने देखा कि एक शख्स खड़ा हुआ उसने अजान दी तो उन लड़कों ने नकलें उतारनी शुरू कर दी अजान की। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो उन लड़कों को बुलाया, अब वो डर गए। आपने कहा ये तुम में से सबसे ऊंची आवाज़ किसकी थी? अब वो एक बच्चा था जिसका नाम अबू महजूरा था, उसकी थी, लेकिन डर के बता नहीं रहे। हाँ तो बाद में लोग फिर पूछा तो कहा आप थे। अल्लाह के नबी ने उनकी अजान की तारीफ़ की, उनकी आवाज़ की तारीफ़ की और इस तरह उनको एक दफ़ा बात की कि उस बच्चे के दिल में ईमान आ गया और वो मुसलमान हो गए और इस तरह नकल असल हो गई। अबू महजूरा अजान दिया करते थे और बड़ी खूबसूरत अजान देते थे। तो बाज़ दफ़ा इंसान किसी चीज़ को कॉपी कर रहा होता है लेकिन बाद में फिर वो उसके लिए असल ही बन जाती है। तो लिहाजा अल्लाह के इस बाब से हमने एक और चीज़ सीखी, और वो क्या कि अजान के 19 और इकामत के 17 कलिमात होते हैं, यानी इकामत में थोड़ा कम लफ्ज़ होते हैं। फिर अगली चीज़ हमने इस चैप्टर में सीखी वो क्या थी कि मौज़िन की आवाज़ को इंसानों, जिन्नात और जो चीज़ सुनती है उन सब के ज़रिए से क़यामत के दिन गवाही का ज़रिया बनाया जाएगा। यानी जहाँ जहाँ अजान की आवाज़ जाती है ना, वहाँ गवाही, वो जगह कल गवाही देंगी, एक एक ज़र्रा गवाही देगा कि यहाँ आवाज़ आई थी। और आज तो आप देखिए कि नेट की सहूलतें, एक अजान होती है पूरे नेट पे आपको उसकी आवाज़ें आती हैं, और माइक पे, लाउड स्पीकर पे अजान का मस्जिद में इहतमाम होना चाहिए क्योंकि इर्द गिर्द की जगह बाहर वहाँ लोगों को डिस्टरबेंस क्यों ना फील हो, लेकिन वो जगह इंशाल्लाह फिर शैतान के शर से थोड़ी सी महफूज होती हैं। अगली चीज़ हमने इसमें सीखी अजान देने का सवाब। आपने फरमाया मौज़िन के लिए सवाब है उस शख्स के सवाब के बराबर जिसने अजान सुनकर नमाज़ पढ़ी, यानी जितने लोग उसकी अजान के ऊपर नमाज के लिए आएंगे उन सब की नमाजों का उसको सवाब है। अल्लाह के नबी ने कहा था ना, दालु अलल खैरी कफाइलिही, कि नेकी की तरफ बुलाने वाला, रग़बत दिलाने वाला ऐसे ही है जैसे कि नेकी करने वाला। तो लिहाजा इस अजर को पाने की कोशिश करनी चाहिए। अगली चीज़ इसमें हमने सीख देखी कि क़यामत के दिन अजान देने वालों की गर्दनें लंबी होंगी, यानी प्रोमिनेंट होंगे, नुमाया होंगे। जो दुनिया में अल्लाह के नाम को बुलंद करेगा अल्लाह ताला उसके नाम को बुलंद करेगा। और अगली बात वही जो मैंने अभी अपने लफ्ज़ों में बताई कि जब अजान की आवाज़ आती है तो शैतान पीठ फेर कर भाग जाता है, अजान ख़त्म होती है तो वापस आ जाता है, फिर तकबीर कही जाती है तो पीठ फेर कर भाग जाता है, तकबीर ख़त्म होती है तो फिर आ जाता है और नमाजी के दिल में वसवसे डालता है, फुलां फुलां बात याद कर, यहाँ तक कि आदमी को पता ही नहीं चलता कि उसने किस कदर नमाज पढ़ी। होता है आपके साथ ऐसा? यानी नमाज पूरी पढ़ जाते हैं, याद ही नहीं रहता 4 रकतें पढ़ी थी कि 3 पढ़ी थी। जो फ्यूचर प्लानिंग है वो सारी नमाज में होती है। खैर से इसके बाद कहाँ जाना है, क्या पकेगा, कहाँ जाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, और अजान कोई कहते हैं कोई चीज़ भूली हो ना तो नमाज़ शुरू कर दो तुम्हें फ़ौरन याद आ जाएगी। वो कौन याद दिलाता है? वो शैतान दिलाता है याद। तो शऊर के साथ नमाज़ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर शैतान हम पे ये काबू नहीं डालेगा। और कम से कम ऐसी जो हदीसें होती हैं ना ये बच्चों को सुनाइए, क्योंकि बच्चे अमूमन ऐसे ही होते हैं। हाँ, वो अभी उनका शऊर नहीं शुरू होता ना, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, जो ही देखा सलाम फिरने के करीब नमाजी हुए तो फ़ौरन आके बड़े चुपके बन के बैठ जाते हैं। मस्जिदों में बाज़ लोग बच्चों को लेके आते हैं ना तो उनकी हरकतें नोट करने के काबिल होती हैं, खूब खेलते हैं, और जूँ ही अजान का मतलब जमात ख़त्म होने वाली होती है ना तो जाके वहाँ बिल्कुल तशहुद में बैठ जाते हैं क्योंकि पता होता है कि अब डांट पड़ेगी। हाँ, तो इस तरह की छोटी छोटी बातें आप उनको बताएं कि देखें इस तरह तो शैतान फिर आपको यानी माइल करता है इन चीज़ों पर। फिर अगली चीज़ हमने इसमें सीखी और वो क्या है कि अजान का जवाब देना चाहिए। जो कलेमात मौज़िन कहे वही पीछे कहे जाएंगे। सिर्फ हैया अलैस सला और हैया अलल फला के जवाब में कहा जाएगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। ये क्यों? इसका मतलब यह है कि नेकी की ताकत कोई नहीं दे सकता मगर अल्लाह ताला ही। ये हमारे यहाँ तो ला हौला वला कुव्वत को बड़ा बुरा लफ्ज़ समझते हैं ना, गलत चीज़ों को देख के पढ़ते हैं। तो ये हालांकि बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, अल्लाह ताला की ही ताकत है कि वो इंसान को गुनाहों से रोके और नेकियों की तरफ रग़बत दिलाए। और अजान का जवाब देना चाहिए, एक अजान का दे दें। बाज़ दफ़ा बहुत सारी अजानों की आवाज़ें घरों में आती हैं या पाकिस्तान में आप देखते हैं कि मस्जिदें करीब करीब होती हैं, तो उसमें ये कि बस एक अजान का जवाब आप दे दें तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला बाद में अगर बाकी ना भी कर सकें तो ठीक है। आप आज देखिए कि बच्चों को अजान की आदत नहीं डाली जाती, हालांकि जो टीन एजर लड़के होते हैं मसलन, जैसे बल्कि टीन तो क्या 8-9 साल से ही बच्चों को घर में आदत डाली है। देखिए ये जो गाने गुनगुनाते हैं या लफ्ज़ बोलते हैं या इधर गपशप करते रहते हैं, अगर उसकी बजाय हमारे बच्चों की ज़ुबान पे अल्लाह के कलमे बुलंद हो, अल्लाह की बड़ाई के कलमे बुलंद होंगे तो एक वक्त आएगा रूहानियत भी आ जाएगी। तो बच्चों को ज़रूर अजान सिखाने का एहतमाम करें और उनको सिखाएँ कि इसका अजर कितना है। अगली चीज़ हमने इसमें सीखी कि तकबीर के बाद बाज़ लोग अकाम अल्लाह व अदवामुहा का लफ्ज़ बोलते हैं तो इसकी सनद ज़ईफ़ है, यानी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जब अज़ान हुई और उसके बाद इकामत हुई तो बस खामोशी से सुन के उसके बाद नमाज अदा की जा सकती है। अगली बात हमने इसमें सीखी कि अज़ान ख़त्म हो तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना चाहिए। कौन सा दरूद है? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन कमा बारक अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये वही दुरूद है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। और इसके बाद फिर क्या किया जाए? दुआ पढ़ी जाए। ये मेरे साथ आप दोहरा लीजिए, अल्लाहुम्म रब्ब हाजिह दावती तामती वस्सलातिल काइमती वस्सलातिल काइमती आती मोहम्मद निल वसीलत वल फदीलत वब असहु मकामम महमूदा निल्लजी वअतहु। इसका तर्जमा क्या है? इस पूरी पुकार यानी आज़ान के और क़यामत तक कायम रहने वाली नमाज के रब। कितना प्यारा खिताब है अल्लाह को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और बुजुर्गी अता फरमा और इन्हें मुकामे महमूद में पहुंचा जिसका तूने इनसे वादा किया। यहाँ लफ्ज़ वसीला आया है तो ये जन्नत का आला तरीन मुकाम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये सिर्फ़ एक बंदे को मिलेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मैं होऊंगा। और जिसने मेरे लिए ये दुआ मांगी, यानी मेरे लिए ये कहा कि अल्लाह के नबी को वसीला दे दिया जाए, तो उसके लिए मेरी शिफात वाजिब हो गई। अब ये वो वसीला नहीं है जिस वसीले के नाते से लोग अल्लाह के नबी को बीच में रख के दुआएं मांगते हैं। अब देखिए कि जहालत जो होती है ना, वो आधे इल्म का होना वो जहालत से भी ज़्यादा बाज़ दफ़ा नुकसान देता है। अब ये दुआएं पढ़ के लोग कहते हैं, देखा कुरान में और हदीस में है ना वसीले का जिक्र, लेकिन वो कौन सा वसीला है? आप अल्लाह के नबी के लिए वो मुकाम मांग रहे हैं जो जन्नत का एक आला मुकाम है। और ये जो मुकाम महमूद भी है ना, ये कोई जगह का नाम नहीं है बल्कि ये तारीफ़ों का मुकाम है। यानी मैदान महशर में अल्लाह के नबी की तारीफ़ें हो रही होंगी, इस तरह आप अल्लाह की तारीफ़ करेंगे तो ये उस मुकाम से मुराद जहाँ प्लेस नहीं है खड़े होने की जगह नहीं, बल्कि इससे ज़्यादा इसका मतलब, इससे मुराद क्या है के मर्तबा, ऑनर, अल्लाह के नबी को ये ऑनर अता फरमा। तो ये दुआ हम सबको आनी भी चाहिए। अज़ान के बाद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अगर हमारे ये कोई बीच में ऐसी रुकावट नहीं होगी तो अल्लाह के नबी की फिर सिफारिश जो है वो हमें हासिल होगी। बाकी चीज़ रह गई इसमें अज़ान के लफ्ज़ों में कोई ज़्यादती करना, तो ये चीज़ जो है इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। अब देखिए कि अफसोस की बात है कि हमें तसल्ली नहीं होती जब तक किसी चीज़ में कुछ नमक मिर्च नहीं डाल लेते। अज़ान दीन का रिचुअल है, इबादत है, इबादत में कमी बेशी नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने अज़ान में भी अल्फाज को बढ़ा दिया, दुआ में तो बढ़ाते ही अज़ान में भी बढ़ा दिया। मसलन ये जो दुआ भी हमने पढ़ी, इसके बाद बाज़ लोग कहते हैं वल फजीलत के बाद कहते हैं वद दरजत रफ़िया, ऊंचे दर्जे दे। और अमूमन मुझे याद है कि टीवी पे भी अज़ान के बाद दुआ पढ़ाई जाती थी, ठीक है। फिर इसके बाद आगे आता है वा अत्ता हो, हाँ वा अत्ता हो, यानी इसका जिससे तूने वादा किया, वरजुक ना शफात और यौमल क़ियामा, ये चीज़ें नहीं है। जितने सही लफ्ज़ आते हैं बस उसी को काफ़ी समझें, वरना तो ऐसे लगता है कि अल्लाह के नबी वो बात नहीं कह सके जो बाद में लोगों ने किया। इसकी ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कि एक दलील यानी इधर भी आपके पास मौजूद है कि आपने बरा बिन आज़िब को एक दुआ सिखाई थी रात को सोते वक्त की, तो आपने उनको सुनाने के बाद कहा अब तुम सुनाओ, तो इन्होंने क्या किया कि बबी नबी जी का की जगह बबी रसूल ही का कह दिया, हालांकि नबी और रसूल दोनों ही थे आप, लेकिन आपने फरमाया कि तुम मेरे ही बताए हुए लफ्ज़ यानी नबी को रसूल में मत बदलो बल्कि नबी जी की कहो। तो इससे पता चलता है कि दुआओं में भी इजाफा नहीं करना चाहिए। फिर अगली बात हमने इसे सीखी कि जो शख्स मौजन की अजान सुनकर ये दुआ पढ़े उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। कौन सी दुआ है हम पढ़ लेते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रदीतु बिल्लाहि रब्बम व बि मोहम्मद रसूलन व बिल इस्लामी दीनन। इसका तर्जमा क्या है? मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो एक है, इसका कोई शरीक नहीं, और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ा आपने दुरूद? अल्लाह उसके बंदे और रसूल हैं। मैं अल्लाह के रब होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने और इस्लाम के दीन होने पर राजी हूँ। ये दुआ पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। और कितनी प्यारी दुआ है। और आप देखिए कितने लोग गाफिल हैं इन चीज़ों से। आप ये भी कर सकती हैं कि इस दुआ को लिख के और इसके तर्जमे और इसके पढ़ने के मुकाम के बाद तो आप लोग ऐसी जगह पे लगा सकते हैं, मतलब मस्जिदों में आप लगा सकते हैं। अजानें होती हैं और बाज़ दफ़ा लोगों को ये मसाइल नहीं पता होते या ये बातें, और छोटे छोटे मौके हैं जिससे इंसान अपने आमाल नेकियों को बढ़ा सकता है। तो बहरहाल इससे इंशाल्लाह ताला इंसान को दर्जा मिलता है। फिर अगली चीज़ हमने इससे जो सीखी वो क्या थी कि हर नमाज के वक्त अजान देनी चाहिए। फिर अगली बात सीखी कि अजान देते वक्त कानों में उंगलियां डाल ली जा सकती हैं। जब मुअज्जिन अजान देते हैं और आपने कभी देखा हो किसी मस्जिद में तो कानों में उंगलियां डालते हैं, ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमल था। फिर अगली चीज़ अजान देने के तरीके में क्या है कि हय्या अलस सलाह कहते हुए दाई तरफ और हय्या अलल फलाह कहते हुए बाई यानी लेफ्ट साइड पर देखना चाहिए। फिर अगली बात हमने इसमें सीखी कि अजान देने की उजरत नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी मस्जिद में किसी इमाम को हायर भी किया जाता है तो उसके भी जहन में ये बात वाज़े हो और देने वाले की भी हो कि ये पैसे जो हैं ना इनको अजान देने के दिए जा रहे हैं ना नमाज़ पढ़ाने के, ये तो उस वक्त के हैं या जो मैनेजमेंट या एक ज़िम्मेदारी या उनके आने में जो गैस लग रहा है या मतलब उनका जो वक्त वहाँ लग रहा है, लेकिन अजान के पैसे नहीं होते। फिर अगली चीज़ हमने सीखी और वो क्या है कि अजान देने के लिए सहाबे कराम में से यानी हज़रत बिलाल जो थे वो मकान की छत पर चढ़ के अजान देते थे क्योंकि उस वक़्त लाउड स्पीकर नहीं होता था। फिर अगली बात हमने सीखी कि अजान के बाद दुआ कबूल होती है। आप अजान सुनते हैं ना दिन में कई बार, उसके फ़ौरन बाद अपने लिए दुआ करें, यानी अजान सुनी साथ साथ उसका जवाब दिया जो हमने भी सीखा, फिर उसके बाद आखिर में दुआ मांग, तो हदीस में आता है कि जो मांगोगे वो दिया जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अजान और तकबीर के दरमियान की दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। इसी तरह एक चीज़ जो हमने देखी है अमल लोगों का कि बीमारियों या कुछ वबाएं फैल जाएं तो अजानें देते हैं घर घर जाके, ये सुन्नत से साबित नहीं है, ये रिवायात ज़यीफ़ है। फिर अगली बात असलातु खैरु मिनन नौम के लफ्ज़ सिर्फ फजर की अजान में कहने चाहिए। फिर उसके बाद हमने देखा कि इकामत अजान के फौरन बाद नहीं होनी चाहिए क्योंकि अजान और इकामत के दरमियान नफिल नमाज का वक्फा होता है। फिर अगली बात हमने सीखी इस हिस्से में और वो क्या है कि जब इकामत हो जाए तो फ़र्ज नमाज के अलावा कोई नमाज नहीं होती। यानी आप मस्जिद में गए, आप अपनी नमाज शुरू कर दी है आपने, वहाँ अजान हुई फिर इकामत हुई, आप अपनी पढ़ते जा रहे हैं, इस सही तरीका नहीं है। जो ही किसी जगह फ़र्ज़ नमाज शुरू हो जाती है ना उसके बाद आप अपनी नफिल भी नहीं कोई पढ़ सकते और उनसे अलग भी नहीं पढ़ सकते। इसीलिए बाज़ दफ़ा जब दरसों के बाद लोग कहते हैं कि जमात कराएं तो मैं उसमें बहुत इस चीज़ को मेंशन करती हूँ कि देखें जो लोगों ने ऑलरेडी शुरू की है ना, या तो फिर उन्हें कहें कि सलाम फेर लें और हमारे साथ मिल जाएं, या फिर आप वेट कीजिए उनके नमाज़ पढ़ने का। क्यों? किस तरह हम पढ़ रहे हैं पीछे कोई और पढ़ रहे हैं तो उससे उम्मत की यूनिटी भी टूटती है ना। तो इसका तरीक़ाकार क्या है कि अगर कोई नमाज़ अपनी पढ़ रहा है, कोई सुन्नत या कोई और कर रहा था, जो ही अजान होगी तो सलाम फेर ले, जिस पोजिशन में रुकू में सजदे में, और वहीं नफ़े अजान सलाम फेर लेगा इंशाल्लाह ताला, उसका कोई गुनाह नहीं, कोई कफ़ारा नहीं, अल्लाह ताला बग़ैर पढ़े भी उसको अजर दे देंगे। फिर अगली चीज़ हमने सीखी कि सफ़र की हालत में जब दो नमाज़ें इकट्ठी पढ़ी जाती हैं तो अजान एक ही दी जाती है जाएगी, लेकिन इकामत दोनों नमाजों की अलग-अलग होगी। अगली बात हमने सीखी कि इकामत हो जाए तो सफ में शामिल होने के लिए भागना नहीं चाहिए, बल्कि वक्कार के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इंसान वहाँ पहुँचे जहाँ पे नमाज पढ़ेगा। फिर अगली बात हमने सीखी कि सहरी खाने का वक्त जो है वो आखिरी वक्त तक है, यानी हज़रत बिलाल जो थे वो इब्तदाई वक्त में अजान देते थे, तो आपने कहा कि बिलाल की अजान सुन के सहरी खाना ना छोड़ो, और इसके मसाइल हम सहरी में किताबो सयाम में देखेंगे कि क्या फ़ौरन लुकमा छोड़ देना चाहिए अजान होके। हालांकि अजान के साथ सहरी खाने का कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, इंशाल्लाह ये हम उस किताब के टॉपिक में देखेंगे। फिर अगली बात कि कोई भाग के नमाज की तरफ आ रहा हो तो उसने अल्लाह के नबी की नाफरमानी की, क्योंकि इस्लाम महज़ब दीन है, हम ऐसे नहीं है कि भाग भाग के इस तरह काम करें कि दूसरे लोग जो हैं वो भी हमारे लिए हमारी वजह से परेशान हों। फिर अगली बात हमने सीखी कि नमाज का इरादा करते ही इंसान नमाज की हालत में आ जाता है, कितनी बड़ी बात है। आपने वजू किया ना, आप नियत कर रहे हैं ना मैं नमाज पढ़ूंगी, तो आप उस वक्त नमाज की हालत में आ गए, आपको अजर मिलना शुरू हो गया, और जब नमाज पढ़ेंगे तो वो एक एक्स्ट्रा अजर मिलता है। फिर उसके बाद अगली बात जो हमने सीखी और वो क्या है, किसी एक ने पूछा कि नमाज की इकामत होने के बाद इमाम बातें कर सकता है, तो उन्होंने मुझे अनस बिन मालिक की हदीस बयान की कि एक मर्तबा नमाज की इकामत हो चुकी थी, इतने में एक शख्स आया और इकामत हो जाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करता रहा। यानी ज़रूरी बात की जा सकती है, मतलब सब सीधी कर लें, बच्चों को पीछे कर लें, सेल फोन अलग कर लें, इस तरह की ज़रूरी बात कर सकता है इंसान, उससे इंशाल्लाह हर्ज नहीं है। फिर इसी तरह एक मरतबा अल्लाह के नबी ने इकामत होने के बाद लोगों की सफ़ें दुरुस्त कराईं, आपको याद आया कि आप जुनाबत से हैं, आपने लोगों से कहा अपनी जगह खड़े रहो, फिर आपने घर जाकर गुसल फरमाया और वापस तशरीफ़ लाए तो आपके सर से पानी टपक रहा था, फिर आपने नमाज़ पढ़ाई। इससे पता चलता है कि भूलना इंसानी बात है, और अल्लाह के नबी के लिए ये बात कोई मतलब अछूत नहीं है कि आप क्यों भूले क्या, और आप पे भी कोई ऐसी हालत आती थी, आ सकती है इंसान होने के नाते। तो ये थे अजान के मुतल्लिक कुछ बातें। अगले चैप्टर में अब हम देखेंगे किबले और सुतरे के अहकामात, बड़े अहम हैं क्योंकि अजान का टॉपिक थोड़ा सा खवातीन से इतना डायरेक्ट मैच नहीं करता, तो हो सकता है आपने ये सोचा हो कि भाई हमें इससे क्या मिलेगा, हालांकि इल्म के हमेशा फ़ायदे ही होते हैं। तो आइए देखते हैं कि किबले और सुतरे के बारे में इस्लाम क्या कहता है। पहली बात ये है, और ये मसाइल गौर से सुनिएगा क्योंकि बाद में बहुत सारे लोगों के जहनों में सवाल होंगे, तो बेहतर है कि इस बात को हम गौर से ही सुन लें। पहली बात है कि नफिल या सुन्नत नमाज सवारी पे अदा हो सकती है, जिधर सवारी का मुंह होगा उधर ही मुंह कर लिया जाएगा, यानी किबले के एक दफ़ा तायुन करने के बाद सवारी पे नफिल नमाज अदा की जा सकती है। सुन्नत तरीका क्या होता था कि आप जब सवारी पर नफिल पढ़ने का इरादा करते तो ऊँटनी का मुंह किबला रुख कर लेते और तकबीरे तहरीमा कह के नमाज शुरू करते, इसके बाद नवाफिल अदा करते जिस तरफ मर्जी सवारी जाए। ठीक है, एक दफ़ा अब आप गाड़ी में बैठे हुए, आपके पास बहुत वक्त है, नफिल पढ़ सकते हैं आप, हमारे पास ये भी सुन्नतें आज नहीं है, हम बातें करते रहेंगे ऐसे ही बेकार, इधर देख उधर देख, वजू किया हुआ अब दो नफिल पढ़ ले, सफ़र में है कोई हरज की बात नहीं, उसमें इशारे से पढ़ेंगे। अब आप गाड़ी में बैठे हैं, अब आपको मुमकिन है कि किबले की तरफ अपना मुंह फेर सकें, साइड पे पीछे, ज़रा आप गाड़ी तो नहीं पूरी मुड़वाएंगे, तो आप वहाँ बैठे बैठे अपने रुख को थोड़ा सा बदल के तो सुन्नत और नफिल दोनों अदा कर सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ नमाज इस तरह से नहीं होती, फ़र्ज़ नमाज के लिए किबला फ़र्ज़ है, उसके लिए आपको क़याम भी करना होता है और फ़र्ज़ भी, यानी उसके लिए आपको क़्याम भी और किबले का तायुन दोनों ज़रूरी है। उसके लिए फिर आपको गाड़ी से उतर के रुक के, यानी एक जैसे भी हम नमाज़ पढ़ते हैं उस तरह पढ़नी चाहिए। दूसरी बात है कि सवारी पे जब नमाज़ पढ़ी जाएगी तो रुकू के लिए सर को झुकाया जाएगा और सजदे के लिए थोड़ा ज़्यादा झुकाया जाएगा, लेकिन आगे मसलन जैसे डैशबोर्ड होता है उस पे नहीं रखा जाएगा, या पिछली सीट पे बैठे और अगली सीट का जो बैक है उस पे सर नहीं रखेंगे। जब भी कोई नमाज़ बैठ के पढ़े तो उसको बैठ के किसी चीज़ को टच नहीं करना चाहिए। बाज़ लोग जो किसी मजबूरी की वजह से बैठ के पढ़ते हैं तो वो अपने आगे तकिए रख लेते हैं, फिर वो अपने बराबर उसको करके तकिए पे सजदा करते हैं, ये दुरुस्त तरीका नहीं है। बस झुकेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा सजदे के लिए झुक जाएँ और कम झुकें। ठीक है। फ़र्ज़ नमाज के लिए अल्लाह के नबी ने जब अदा करना होता, मैं दलील आपको सुना देती हूँ, सही बुखारी की रिवायत है कि जब फ़र्ज़ नमाज अदा करनी होती तो सवारी से उतरते, किबला रुख खड़े हो जाते, ठीक है। फिर अगली बात है, किबले का तायुन क्या है? शमाल और जनूब के दरमियान, मगरिब की तरफ तमाम सिमत किबला है। हमारे यहाँ किबले के मामले में बड़ा तशद्दुद बरता जाता है। एक लाइन से कोई इतना से इधर हो जाए ना, तो लोग कहते हैं इसकी नमाज नहीं हुई। इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी आपको, और आप जब कुरान पाक तफसीर से शुरू करेंगे, दूसरे पारे में आप ये मसला पढ़ेंगे, अल्लाह ताला ने शत्र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, शत्रल मस्जिद अल हराम। और शत्र का लफ्ज़ सिर्फ एक लाइन नहीं होती, यानी आप एक दायरा खींचे ना, तो एक दायरे के बीच का इतना टुकड़ा, बस आप जैसे ये मेरी दो उंगलियों के बीच का फासला देखें, अब ये पूरा दायरा है, तो इस पूरे हिस्से को शत्र कहेंगे। आप यहाँ पढ़ लें, इतनी इधर कर लें, इधर कर लें, इसके अंदर अंदर है। इस्लाम ने कोई एक लाइन नहीं खींची, क्योंकि हर एक के पास कंपस नहीं होते। हम जिंदगी के किबलों में तो कभी कभी पूछते हैं कि इस्लाम क्या चाहता है, शादियों में इस्लाम का क्या किबला है, मौत में गमी में इस्लाम का क्या किबला है, खुशी और गमी में क्या किबला है, बच्चे की पैदाइश के होने या उससे पहले के मराहल में क्या किबला है, लेकिन नमाज के वक्त हम बहुत तशद्दुद बरतते हैं। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने एक रुखसत रखी है। फिर अगली बात यह है कि अगर किबले की जानिब नमाज पढ़ते वक्त सामने कोई कब्र हो तो क्या किया जाए, के कब्र से फिर आगे बढ़ के नमाज़ पढ़ा जाए, क्योंकि आपको पता है कब्रिस्तान में नमाज जायज़ नहीं है, और कब्र की तरफ भी नहीं, इससे शिर्क होता है। इसी से फिर वो बात याद आ जाती है कि जो मस्जिद नबवी में जाके लोग ना समझी की वजह से और मोहब्बत की वजह से शिर्क करते हैं। आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा है ना, वो यूँ है, और आप जो लोग खड़े होते हैं, जो लोग गए हैं, वो मेरी बात से शायद इत्तेफाक करेंगे, किबला सामने है यूँ, और अगर अल्लाह के नबी की कब्र को फेसिंग करना है आपने, तो आप यूँ करते हैं। मैंने खुद देखा कि हमारे मुल्कों की औरतें बेचारी मोहब्बत में गई, तो वो अल्लाह के नबी की कब्र की तरफ मुंह करके हाथ उठा के यूं दुआ मांग रही थी। अब वो पता नहीं दुआ मांग रही थी या क्या कर रही थी, तो वहाँ जो बीच में मतवियात होती हैं जो रोकती हैं, तो वो उसके हाथों पे स्टिक मार रही थी, कहती थी इधर नहीं खड़ी हो, सामने मुँह करो, कि इवन दुआ भी कर रहे हैं वहाँ खड़े होके, तो आपको अल्लाह के नबी की कब्र की तरफ मुँह नहीं करना, क्योंकि हम अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह के नबी से नहीं मांगते। फिर अगली बात है सुतरा, इससे बहुत लोग गाफिल हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो की मज़ीद ज़रूरत है। सुतरा कहते हैं वो चीज़ जो नमाजी अपने आगे रखे, ताकि कोई दूसरा शख्स उसकी नमाज में से उसके आगे से गुजरे तो फिर इसकी नमाज ख़राब ना हो। इसके बारे में जो बात है वो क्या थी कि सुतरा लाठी, बर्छी, लकड़ी, दीवार, सुतून और दरख्त वगैरह की चीज़ों से हो सकता है, यानी आप कहीं भी नमाज़ पढ़ते हैं। मिसाल है कि इस हॉल में आपको नमाज़ पढ़नी है, आप क्लास ख़त्म हुई आप कहते हैं अच्छा मैं जोहर की नमाज़ पढ़ लूँ, क्या करेंगे, जहाँ मर्जी खड़े हो जाएंगे? नहीं, आप दूसरों को भी गुनाहगार करेंगे। आप पहली बात है अपने लिए कोना चूज़ करें, आपके सामने दीवार हो, यानी इतनी जगह हो कि जहाँ आप सजदा कर सकें वहाँ पढ़ें। कोई ऐसी जगह नहीं, जैसे किसी जगह आप गए मस्जिद में, बहुत बड़ी मस्जिद है, हॉल है पूरा, आप अकेले थे, आप क्या करें, अपने आगे अपना बैग रखें। सुतरा जो उसकी ख़ास लंबाई होती है इतनी, यानी आपने फरमाया कि पालान की पिछली लकड़ी के बराबर, कोई शख्स नमाज अपने सामने रख ले तो उसके आगे से गुजरने में फिर उसकी परवाह ना करे, और ये छोटा सा होना चाहिए, यानी एक हाथ लंबी, हाथ ये पूरी कोहनी से लेके यहाँ तक को भी कहते हैं, ये भी बाज़ लोग ज़मीन पे एक लाइन खींच लेते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। सही मसला क्या है कि सामने खड़ा किया जाए ऐसी चीज़ को, कि उसके बाद फिर अगर कोई आगे से गुजरता है तो गुनाह नहीं होता। फिर अगली बात है कि इमाम का सुतरा मुक्तदी के सुतरे के लिए काफ़ी होता है। अब ये चीज़ अगर ना होती तो यकीन करें हम ख़वातीन की तो सारी नमाज़ें ख़त्म हो चुकी होती, जो ही नमाज़ आप खड़ी करते हैं लोगों के बच्चे सफ़ों में से गुजर के आ रहे होते हैं, और बस ना समझ औरतें भी आगे से गुजरती हैं। अगर आगे वाकई वो बात ना हो ना कि दूसरे रूम में इमाम के आगे जो सुतरा है वो आपके लिए काफ़ी है, तो ये हरम की नमाज़ें भी हमारी ना हो। अब देखते हैं कि नमाज़ पढ़ते हुए हरम में भी लोग आगे से गुजर रहे होते हैं, तो इमाम के आगे जो सुतरा है वो आपको किफ़ायत कर रहा है, वरना तो आपकी नमाज़ टूट जाए, यानी इसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। फिर अगली बात है कि नमाजी के आगे से गुजरना शदीद गुनाह की बात है। हमने सीखा कि आपने फरमाया कि जो नमाजी के आगे गुजरने की सजा को अगर जानता हो तो 40, इसके आगे आपने दिन महीने या साल क्या कहे इसमें रावी को शक है, कि 40 तक वहां खड़ा रहना पसंद करे। देखिए अल्लाह ताला इंसान की नमाज की हिफाजत कर रहा है, तो जहाँ नमाज की हिफाजत आगे गुजरने से नहीं, तो फिर उसके पास शोर करना, टीवी चलाना, बातें करना, अजियत देना, ये कितनी मुश्किल बात, कितनी गलत बात होगी। तो इसलिए इंसान को जहाँ कोई नमाज पढ़ रहा हो ना, तो वहाँ हत्तुल वहाजा खामोश रहना चाहिए। मैं हैरान होती हूँ कि लोग नमाज भी ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे दुनिया की हमारी बातें चल रही होती हैं। आप किसी को दूसरे के साथ बात करता देखें ना, तो हुक्म है कि वहाँ से हट जाएं, या आप अगर दो लोग बात करना चाह रहे हैं तो वहां से हट जाएं। तो नमाज क्या है? अल्लाह से बातें हो रही हैं। नमाज में बंदे की हालत बदल सकती है, नमाज में बंदा अल्लाह सुबहान तआला से राज और न्याज कर रहा होता है, उसके दिल की उसमें यानी इस तरह की बातें उसके दिल में आ रही होती हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें बंदे को अपनी नमाज को हिफाजत करने के लिए नहीं करनी चाहिए? तो बीच में किसी जगह अगर आप कोई काम ऐसा करते हैं कि जिससे आपकी नमाज ख़राब हो, तो उससे अवॉइड कीजिए। फिर अगली बात है कि अगर कोई नमाज पढ़ते वक्त अगर आपके सामने से गुजरना चाहे, तो उसको हाथ से रोकना चाहिए। आपने फरमाया ये शैतान होता है, यानी कि रोकने के बावजूद भी अगर ना रुके, बार बार गुजरना चाहे, तो फरमाया उससे लड़ाई करो, यानी वो एक शैतान है जो आपकी नमाज में खलल डालता है। एक मरतबा अल्लाह के नबी ने नमाज अदा की तो एक बकरी दौड़ती हुई आई और आपके आगे से गुजरना चाहिए, आपने उसका रास्ता रोका कि बकरी को फिर सुतरे के पीछे से गुजरना पड़ा। तो आपने यानी फरमाया कि शैतान जो है वो बाज़ दफ़ा इंसान के सामने उसकी नमाज की खराबी के लिए मुख्तलिफ तरह से रूप धार के आता है। फिर इसी तरह इंसान की नमाज और जो सुतरा है उसके बीच में एक बकरी के गुजरने का फासला होता था, यानी वो उतना ही तकरीबन जितना आजकल हमारे एक जाय नमाज की लंबाई होती है, 1 सौ मीटर, के जहाँ पर आराम से सहूलत से सजदा कर सके। फिर अगली बात यह कि बालिग औरत, गधा और स्या कुत्ता, इसके अगर गुजर उसके आगे से गुजर जाने से नमाज टूट जाती है, और स्या कुत्ता जो है वो भी शैतान है। अब आप बताइए कि जो औरतें हम नमाज पढ़ती हैं और हमारे आगे से औरतें गुजर जाती हैं, तो क्या हमारी नमाज कायम रहती होगी? मैं सोचती हूँ कि वो लोग तो बेचारे दीन से दूर हैं ही, जो नमाज़ें पढ़ते ही नहीं हैं, जिनको तो जिन्होंने अपने आप को फारिग किया हुआ है। लेकिन जो दीन सीखने सिखाने और पढ़ने पढ़ाने के लिए भी मस्जिदों में आते हैं ना, उनको भी बड़ी इसलाह की ज़रूरत है। और कम अज़ कम इन चीज़ों को पढ़ते हुए हमें अपने अमल को देखना है, कभी किसी की नमाज के आगे से ना गुजरें। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऐसी जगह पढ़ें कि जहाँ कोई आपके आगे से ना गुजरे। बाज़ लोगों को समझ नहीं आती, वो हवनकों की तरह फिर रहे होते हैं यूँ नीचे, तो वो देखते ही नहीं हैं, उनकी नज़रें तो पता नहीं कहाँ लगी होती हैं। तो वो ऐसे लोग जो हैं वो फिर नमाज के आगे से भी गुजर जाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए। फिर अगली बात हमने इसमें सीखी कि अगर कोई सो रहा हो और जगह ही नहीं है कोई और जगह, तो उसके पीछे नमाज हो सकती है। कोई बच्चा सो रहा है आपका, कोई औरत सो रही है। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैं अपने हुजरे में सोई होती थी, मेरे पाँव आपके सामने होते थे रात को, यानी ये तहज्जुद का वक्त होता था, तो अल्लाह के नबी जब सजदा करना चाहते तो मैं अपना पाँव समेट लेती, जब आप खड़े हो जाते तो मैं अपना पाँव फैला लेती, और इन दिनों घरों में चिराग नहीं होते थे। इससे ये भी पता चल रहा है कि घर कितना छोटा था, यानी इतना छोटा हुजरा था कि एक सोए तो दूसरा खड़ा होकर नमाज पढ़े, तो उसके लिए इतनी भी जगह नहीं कि आगे उसको पूरा सजदा करे। तो इससे हमें पता क्या चला कि गुजरना मना है, लेकिन अगर कोई लेटा हुआ पीछे तो फिर उसमें कोई हरज नहीं है। ठीक है, फिर इसी तरह देखिए, कभी आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ सुथरा नहीं आपके पास होता, कोई चीज़ है ही नहीं, तो क्या किया जाए? या कोई ऐसा बंदा पढ़ रहा है कि जहाँ उसने आगे कुछ नहीं रखा, तो आपको मजबूरन गुजरना है, तो एक सफ का फासले के बाद से फिर गुजरें, तो फिर इंशाल्लाह उससे हरज नहीं होता। ठीक है, अब आप देखिए हालात फ़र्क हैं, आइडियल हालात और होते हैं, मजबूरी के हालात और होते हैं। तो जिस तरह के हालात होंगे उसी तरह से फिर इंशाल्लाह ताला हम उस तरीके को साथ लेके चलेंगे, तो अल्लाह ताला फिर हमारे लिए आसानियाँ करेगा। कोई सवाल इस दो मौजूद से मुतल्लिक जो हमने इसमें डिस्कस किए? जी, इन्होंने सवाल किया जहाज़ में नमाज़ पढ़ने की, पीछे से आपका सवाल, फ़र्ज़ नमाज़ गाड़ी में बैठ के नहीं पढ़ सकते, इल्ला ये कि कोई हैंडी कैप है जो पढ़ते ही बैठ के है, खावत कोई ऐसे लोग होते हैं ना हैंडीकैप्ड कि जिनके लिए खड़ा होना मुमकिन नहीं, या जो वैसे भी खड़े नहीं होते, फिर वो तो ज़ाहिर है कि पढ़ सकते हैं, लेकिन आम लोग बैठ के फ़र्ज़ नमाज़ नहीं पढ़ सकते। आप सोच सकते हैं कि एक खातून ने मुझे कहा कि मैं ड्राइविंग करते हुए भी नमाज का वक्त आता है तो नमाज़ पढ़ लेती हूँ। आप ज़रा सोचें, कई कहती हैं हम बच्चों को स्कूल लेने जाते हैं तो वहाँ हमें लाइन में लगना पड़ता है, तो हम वहीं बैठे बैठे नमाज़ पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं है, फ़र्ज़ नमाज का मसला अलग है। ठीक है, जहाज़ के अंदर नमाज़ पढ़ने का भी तरीका वही होगा कि आप इतना मज़ा आता है, यकीन करें मुझे तो सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है कि वक्त नमाज का और हम पढ़ें। आप क्यों गिव अप करते हैं, स्पेशली जब लॉन्ग फ्लाइट्स होती हैं तो उसमें आप जाके पीछे आराम से पढ़ सकते हैं। ये मसला आगे आने वाला है, इसलिए वहाँ हम इसकी डिटेल सारी साथ ही चाहती हूँ कि फिर वो वहीं रिकॉर्डिंग में भी मसले आएँ, क्योंकि बाद में कोई एक स्पेसिफिक मसला सुनता है तो वो वहीं पर होना चाहिए। तो इंशाल्लाह इसको हम वहाँ डिस्कस करेंगे। जी, इसका बैकग्राउंड ये था कि अल्लाह के नबी को सुनवाए सिखाए गए थे, एक सहाबी को ख्वाब में सुनाई गई थी अजान, तो उन्होंने जाके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह आके बताया कि रात को मैंने ख्वाब में ये देखे हैं, तो आपने उसकी तस्दीक की और फिर वो अजान में शामिल हुए। और इस तरह आता है कि जिब्रील ने भी सिखाए थे, यानी ये अल्लाह के नबी के तौर से हुए। अब आज यहाँ एक छोटी सी बात कहूँगी अजान के बारे में कि बाज़ जगह ऐसा होता है कि अजान के बाद एक ख़ास तौर का दुरूद पढ़ा जाता है, पता नहीं किस तरह पढ़ते हैं, जायज़ नहीं। देखिए, इबादत में कमी पेशी नहीं कर सकते। अब अजान से पहले, अजान के बाद कोई ऐसे लफ्ज़, कोई दुरूद पढ़े जाने, ये चीज़ें इस्लाम, यानी इसकी रुख्सत नहीं है, इजाज़त नहीं है। ये कहती हैं कि माई 4 ईयर सन, ओल्ड सन, टुडे ही वेंट मस्जिद टू ऑफर नमाज इमाम फजर, फजर नमाज, प्लीज़ प्रे फॉर हिम। अच्छा जी, अल्लाह ताला उसको हमेशा के लिए पक्का नमाजी बना दे। और बच्चों को थोड़ी सी तरबियत देने के बाद फिर लेके जाना चाहिए मस्जिदों में ताकि वो शुरू से यूज्ड हों। आफ्टर नमाज इन मस्जिद वुमेन यूज देयर पर्सेस टू पास, समझे? हाँ जी, ये भी एक मसला होता है, जिनको जाना होता है वो कहती है मेरा पर्स आगे से दे दे। देखिए, शऊर के साथ इंसान जिए। आप जब नमाज के लिए मस्जिद में गए तो आपको पता है ना कि आपको जल्दी निकलना है, आपको पता है ना कि आपको, यानी कोई मसला पैदा हो सकता है, पहले से उसका हल ढूंढे। अच्छा, एक ये सफ़ों पे भी जब बात आएगी तो वहाँ तो आप बहुत सारी बातें देखेंगे, यानी जो चीज़ें मैं मस्जिदों में जाके सीख देखती हूँ मेरा दिल कुड़ता है। मैं जाती तो नमाज़ पढ़ने के लिए हूँ, कभी कभी जैसे मैं, हमारे करीब भी मस्जिद है, वॉक के भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ से मैं बोझल दिल के साथ आती हूँ। जिसका दिल चाहता है जहाँ खड़ा नमाज़ पढ़ा है, सफ़ बनी हुई है वो पीछे अपनी पढ़ रहे हैं, वो सफ़ आगे है वो अपनी अलग से जमात की हुई है उन्होंने, ये सारी चीज़ें इल्म की कमी है। जी आप, हाँ जी, देखिए मस्जिद हराम में मुमकिन ही नहीं है ना कि आपके आगे कोई ना गुजरे। और फिर वही बात है कि अगर फ़र्ज़ नमाज है तो इमाम का सुतरा तो आगे होता ही है ना, तो वो आपको किफ़ायत करता है। लेकिन हमें अपने तौर पे हत्तुल वसा कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी जगह खड़े हों जहाँ कोई ना गुजरे, पिलर हो कोई, या आप अलग से औरतों का हिस्सा है। और इसके लिए आप देखिए डिसिप्लिन के साथ जब होते हैं ना, पगली सफ़ों को पूरा करते हैं तो कोई पीछे गुजरता ही नहीं है। ठीक है जी, आप किसी का सवाल है? जी आप, जी ये कहती हैं कि बच्चे नमाज में तंग करते हैं जब हम उनको मस्जिदों में ले जाते हैं, अगर आगे से गुजरें तो क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप देखिए कि बच्चों को पहले से ट्रेन करना चाहिए। हम कहीं भी जाते हैं तो बच्चों को कुछ मैनर्स और इस तरह की बातें सिखा रहे होते हैं ना, तो इस तरह ये भी सिखाइए कि बेटा वहाँ जा रहे हैं, एक फीलिंग अगर आप अपने बच्चों को दे देना, और वो क्या है कि मस्जिद अल्लाह का घर है। किसी के घर जाते हैं ना तो हम कितने प्रोटोकॉल से बैठते हैं, किसी को हमारी आवाज़ ना आए, कितना तरीके से बैठो, मेहमान क्या कहेगा, मेज़बान क्या कहेगा। मस्जिदों के अंदर आते हुए हम सब भी अगर ये फीलिंग लेके आए ना कि यह अल्लाह का घर है, यकीन करें मैं इतनी हैरान होती हूँ कि लोग मस्जिद के प्रेइंग रूम में बैठे हिप्ते कर रहे होते हैं, और ख़वातीन बच्चों को लेके आती हैं, वो स्कूल पढ़ रहे हैं कुछ पारा, और माएँ पीछे फ़ैशन की बातें कर रही हैं, किताबों की बातें कर रही हैं, किताबों की तो क्या, यानी कपड़ों की बातें कर रही हैं। ये शऊर की कमी है। मस्जिद के प्रेइंग रूम में कम से कम आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए, और बाज़ लोग जाके अंदर हालचाल पूछ रहे हैं, सलाम करें, मैं तो मुंह नीचे कर लेती हूँ, क्या करे बंदा। बाज़ लोग आपको देखिए कि बाज़ लोग आपको जुमे के खुतबे के दौरान सलाम करते हैं, आप इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कितना बड़ा गुनाह है खुतबे के दौरान इवन किसी को सलाम भी करना, या किसी को ये भी कहना कि तुम चुप रहो, उसने भी लख बात की। तो लिहाजा ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता माहौल डेवलप करना चाहिए, लेकिन बच्चों को सिखाएं, और फिर अगर वो ऐसी कोई गलती करे तो उनको सिखाएं। यकीन करें छोटा बच्चा भी समझता है, आंख का इशारा भी समझता है, और लेकिन फिर यह कि उसके लिए अगर कभी वो ऐसा काम करता है तो आइंदा फिर उसको उसके लिए ट्रेन करें। एक तो बहुत छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको तो वैसे ही किसी की कस्टडी में ही देखे नमाज़ पढ़ें। लेकिन ये जो मैं अभी चंद दिन पहले भी मैं एक मस्जिद में गई हूँ, अब माएँ अंदर कुछ सुन रही हैं और प्रेइंग रूम में बच्चे यूँ दौड़े लगा रहे हैं और भाग रहे हैं कि जो बच्चियाँ भी वहाँ, बच्चियाँ अपनी खड़ी बातें कर रही हैं। मैंने कहा देखिए इन बच्चों को समझाएं कि ये प्रेइंग रूम है, आप बैठ के इनके साथ कुछ काम कर लें, इनको कुछ सिखा दें, ये कोई प्लेग्राउंड थोड़ी है क्या पूरी मस्जिद के अंदर ऊपर नीचे चक्कर लगा रहे हैं और भाग रहे हैं। इसी से फिर इनके जहन से शुरू से तकद्दस ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जी, हाउ लॉन्ग शुड सूरा बी, आएगा ये मौजू इंशाल्लाह। अभी आपकी असल नमाज शुरू नहीं हुई, नमाज जब इस चैप्टर आगे आएंगे तो उसमें आप सीखेंगे। सूत्रा की विड्थ कितनी होनी चाहिए, कितनी भी हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लंबाई का है। यानी 1 फुट समझ लें अपने जहन में, एक पतली सी स्टेक, कोई छड़ी दरख्त से उतार के, जैसे आपका ये पर्स है ये भी किफायत करता है इंशाल्लाह ताला।
सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।